अगली बात सुनकर तो आप और भी मौत को याद करना चाहेंगे, और वो क्या है, मौत को याद करना इबादत है। कितने लोग ये बात जानते थे पहले? हम तो नहीं जानते थे ये बातें, हम तो नमाज रोजे को इबादत कहते हैं। हालांकि आप देखिए, उठना बैठना, वुजू करना या कई घंटे भूखे रहना और सिर्फ बैठकर मौत को याद करते रहें, तो आप आबिदा हैं और आप आबिद हैं। कैसे? दलील देख लेते हैं। अन अनसिन रदी अल्लाह अनहु कल जुकिरा इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलुन बिइबादतिन वाजतिहादिन फकाला कैफ जिक्रु साहिबुकुम लिलमौत कालू मा नस्माहु यस्कुरुहु काला। ज़रा सुनिए, लैस साहिबुकुम हुनाक। रवाहुल बज़ार। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी की इबादत और रियाजत का जिक्र किया गया तो आपने दरियाफ्त फरमाया, यानी पूछा, ही आस्क्स, क्या तुम्हारा साथी मौत को कितना याद किया करता है, यानी वो मौत को कितना याद करता था। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, हमने इसे कभी मौत का जिक्र करते तो नहीं सुना। आपने फरमाया, फिर तुम्हारा साथी इबादत में नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहुत दफ़ा सिर्फ इबादत का एक बोझ रह जाता है, बेरूह इबादतें, बेरूह नमाजें, बेरूह बेतकवा के रोज़े जो होते हैं ना, वो इंसान को और ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। जब तक मौत की याद साथ ना हो, बंदा इबादत की हालत में नहीं। तो आपने फरमाया कि तुम्हारा साथी इबादत के इस दर्जे को नहीं पहुंचा जिसका जिक्र तुम कर रहे हो। ये बज़ार की रिवायत है। एक और दलील, अन सहल इब्ने साद ने साइदी जी रदी अल्लाहु अन्हो काल मा तरजलो मिन अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लमा फजाल अस्हाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि सल्लमा यस्नून अलैहि व यस्कुरून मिन इबादतिही व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साकितुन फलम्मा सकतु काल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि सल्लमा हल काना युक्सिरु ज़िक्रुल मौत قالوا لا قال فهل كان يد كثير مما يشتهي قالوا لا قال ما بلغ صاحبكم كثير مما تسحبون إليه। सहल बिन साद कहते हैं कि सहाबे रसूल में से एक आदमी फौत हो गया तो सहाबे कराम ने इसकी तारीफ़ की और इसकी कसरत इबादत का जिक्र किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते रहे। जब सहाबे कराम खामोश हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या वो कसरत से मौत का जिक्र करता था? सहाबे कराम ने अर्ज़ किया, नहीं। फिर आपने पूछा, क्या इसने मरगूबात नफ्स को छोड़ा? ये क्या होती हैं? लस्ट, ख्वाहिशात, वॉन्ट्स, यानी वो हर वक्त दुनिया की ख्वाहिशात में पड़ा रहता था या उसको छोड़ दिया? साहबा ने अर्ज़ किया कि नहीं छोड़ा। मुराद है कि जो बंदा अपनी हर वक्त ही ख्वाहिशात को ना पूरा करता रहे या पूरा करता है, तो गोया कि फिर वो मौत को याद नहीं रखता। आपने इरशाद फरमाया, जिस दर्जे को तुम पहुँचे हो, इस दर्जे को वो नहीं पहुँचा। तबरानी की यह रिवायत है। तो क्या फिर सीखा? कि मौत को याद करेंगे ताकि इबादत में भी हमारा नाम आ जाए और आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारे अंदर से दुनिया की बेकार चीज़ों की रग़बत ख़त्म हो। देखिए, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे दिल से दुनिया निकल जाए लेकिन नहीं निकलती ना। तो मौत को याद कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता आपकी शॉपिंग की लिस्ट कम होती जाएगी, आपके कपड़े वही होंगे जो आप पहन सकें, गर्मी सर्दी के मुताबिक लिबास, खाना पीना ज़रूरत का रहेगा, फिर सिर्फ आप पौष ज़िंदगी के ख्वाब देखना और इसी को कामयाबियों का गुण बनाना और खूब से खूब तर की तलाश में अलहाक मुतकासर हद तजुर तुम मकाबिर, इस कैफियत को फिर इंशाल्लाह नहीं पहुंचेंगे तो ज़िंदगी खुद बहुत आसान होगी। और अगली बात, मौत और कब्र को याद रखने वाला सही मानों में अल्लाह से हया का हक अदा करता है। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाहु अन्हु काल काल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तहयू मिन अल्लाहि हक्कल हयाई قلنا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إنا لنستحيي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تخفض الرأس وما وا وتخفض البطن وما هوى وتتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا يعني من الله حق الحياء رواه الترمذي। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला से इस तरह हया करो जिस तरह हया करने का हक है। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, और अल्लाह का शुक्र है कि हम अल्लाह से हया तो करते हैं। आपने इरशाद फरमाया, ऐसे नहीं बल्कि इस तरह जिस तरह हया करने का हक है, और वो ये कि तुम हिफाजत करो सर की, सर से मुराद यानी ब्रेन, दिमाग, सोचें, और जो कुछ सर में है, मुराद क्या है, आँख, कान और ज़ुबान वगैरह, इनका सही इस्तेमाल कीजिए। और फिर पेट की हिफाजत करो। पेट की हिफाजत से क्या मुराद है? कि इसमें कोई हराम चीज़ ना जाए। और इन चीज़ों की हिफाजत करो जो पेट के साथ लगी हुई हैं, यानी शर्मगाह और हाथ पांव वगैरह, यानी जिना और उसके कुरुबात की तरफ इंसान ना जाए। और याद करो कब्र में हड्डियों के गल सड़ जाने को। और जो शख्स आखरत की ज़िंदगी का ख्वाहिशमंद हो, इसे चाहिए कि दुनिया की जेब व जीनत छोड़ दे। जिस शख्स ने ये सारे काम किए, इसने गोया अल्लाह ताला से इस तरह हया की जिस तरह वाकई हया करने का हक़ था। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया। तो आप देखिए कि इस पूरी हदीस में जो बात आपको मुझे समझनी है वो क्या है कि कब्र को याद रखेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला जिस्म के बाकी आज़ा से गुना नहीं होगा। चंद लम्हे के लिए आप सिर्फ अल्लाह को नाराज़ कर दें, ये तो बड़ी ही महरूमी की बात है। तो इस पहले टॉपिक में हमने क्या सीखा, खुलासा क्या है कि मौत का जिक्र भी करना चाहिए, तذکرہ भी करना चाहिए और तैयारी के मोड में लोगों को लाना चाहिए। बस लोग मौत का जिक्र इस रंग में करते हैं कि अब दुनिया से तो कुछ लेना देना नहीं। देखिए ये पसंदीदा नहीं है। हलाल के साथ लीजिए, ज़रूरत का लीजिए, अल्लाह की रज़ा के साथ लीजिए, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। कुछ लोग इन मौज़ूआत को इसलिए भी नहीं सुनते कि इसके बाद सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सारे कपड़े फेंकने पड़ेंगे, घर के बर्तन तोड़ दें। ऐसा बिल्कुल मकसूद नहीं। एक जुमला लिख लें तो बात बहुत आसानी से समझ आएगी। दुनिया हाथों में रहे, दिल में ना आए। कि क्रिस्टल का ग्लास टूट गया तो साथ दिल के ही 100 टुकड़े हो गए। खाइए, पिए, इस्तेमाल कीजिए। बात लोगों को हक होता है, कपड़े बना लेते हैं पहनते नहीं, ख़राब हो जाएंगे। बर्तन अच्छे से अच्छे सजा लिए और दिखाते भी हैं शोकेसों में, मेहमानों के हाथ में कागज़ की प्लेटें पकड़ा देते हैं कि चावल डालो शोरबा डालो तो उनके कपड़ों पर गिर जाएं। इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या करेंगे आप अपने मेहमान की। तो ये बुत हैं जो सजाए हुए हैं आपने अलमारी में, नहीं नहीं निकाले तो टूट जाएंगे, गंदे होंगे, धोने पड़ेंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो इस्तेमाल कीजिए, खाइए, पिए, अच्छा घर बना सकते हैं। हलाल के दायरे में अल्लाह ने हर ख्वाहिश को पूरा करने का पूरा मौका दिया हमें इस्लाम में, और यही हमारे दीन की खूबसूरती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगले टॉपिक पे चले, चलिए मेरे साथ दोहराइएगा, तमन्नयिल मौती ममनून। तमन्नयिल मौती ममनून, मौत की तमन्ना करना मना है। यानी आप कोई बैठकर कह दे अल्लाह करे मुझे मौत आ जाए और मैं मरी जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसके क्या दायरे हैं? इसमें से पहली चीज़, मौत की ख्वाहिश करना मना है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم। दोहराइएगा, मुश्किल लफ्ज़ है इसलिए आपको पेंसिल हाथ में रखनी पड़ेगी और आपको देखने के लिए। ला यतमन्नयन्न अहदकुमुल मौत इम्मा मुहसिनन फलअल्लहु अन यज़दाद खैरन व इम्मा मुसीयन फलअल्लहु अन यस्तातिब। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स मौत की तमन्ना न करे। अगर कोई नेक आदमी है तो अपनी नेकियों में इजाफा करेगा, और अगर गुनाहगार आदमी है तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांग ले। इसे बुखारी ने रिवायत किया। देखिए कितनी खूबसूरत लॉजिक है। अगर नेक है तो क्यों मौत की तमन्ना करे और नेकियाँ करे? लंबी उम्र होती है ना, तो नेकियों के साथ होगी तो वो दर्जे बंदे के शहीद से भी बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप नेक हैं तो लंबी उम्र मांगिए ताकि नेकियां करें, और अगर कोई गुनाहगार है तो शायद तौबा कर ले। तो लिहाजा कभी भी मौत की तमन्ना ना कीजिए। और आज देखिए कि ख़ुदकुशी का रुझान, डिप्रेशन और स्ट्रेस का जो मामला है वो तो आप सभी जानते हैं। अब एक दुआ सीखेंगे हम, बहुत ही खूबसूरत है और इसको आपने ज़रूर याद करना है। अन अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतमन्नयन्न अहदकुमुल मौत मिन दर्रि असाबहु फइन काना ला बुद्दा फाइलन फलयकुल। यहाँ से आगे दुआ शुरू होती है, आप अपनी बुक में इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, मेरे साथ दोहरा लीजिए। अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरल्ली वतवफ्फनी इज़ा कानतिल वफातु खैरल्ली। आपने फरमाया तुम में से कोई भी आदमी तकलीफ़ या मुसीबत की वजह से मौत की आरजू न करे। अगर इसके बगैर कोई चारा ना हो तो तो यूं कहना चाहिए कि या अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक मेरे जिंदा रहने में भलाई है, और मुझे उस वक्त वफात दे जब वफात में मेरे लिए भलाई हो। इसे बुखारी ने रिवायत किया। अब देखिए, बाज़ दफ़ा लोग बेड रिडन हो जाते हैं, इतनी तकलीफ़ है, रोते हैं, धोते हैं, या कभी कभी ईमान पे हमला हो सकता है, कभी इज्जत पे हमला हो सकता है, ऐसे हालात में फिर आप ये दुआ मांग सकते हैं, समझ गए? यानी आम हालात में मौत की दुआ या तमन्ना नहीं की जा सकती, सिर्फ ऐसे हालात जब ये लगे कि जिंदा रहना मेरी जान, मेरे ईमान, मेरे माल या फिर मेरे दीन के लिए नुकसानदेह है, तो फिर ये दुआ कीजिए कि अल्लाह जब तक जिंदा रखना मेरे हक में बेहतर है तो मुझे जिंदा रख, और इसके बरक्स दूसरी तरफ भी है। एक और दुआ जायज़ है, और वो है शहादत के लिए दुआ करना जायज़ है। यानी ये तो हमारी डिक्शनरियों में से निकल गया, क्योंकि हमने तो शहीद होने से पहले के सारे मराहिल को ही निकाल दिया इस्लाम में से। तो आइए ज़रा देखिए अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं। अनबी हुरैरत रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल समितु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लवदित्तु अन्नी उक्तल फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा अहया सुम्मा उक्तलु सुम्मा अहया सुम्मा उक्तलु सुम्मा अहया सुम्मा उक्तल। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं पसंद करता हूँ कि अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊँ फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊँ फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊँ फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊँ। इसे बुखारी ने रिवायत किया। एक तो आपको इससे शहादत का शौक़ समझ आ रहा है, दूसरा एक सवाल है मेरा आपसे, क्यों अल्लाह के नबी बार बार अल्लाह के रास्ते में शहीद होना चाह रहे हैं? शहीद को चींटी के काटने से भी कम तकलीफ़ होती है मौत की। ये जब भी हमने मौत की बातें थोड़ी शुरू में तारुफ में सुनी है ना, शहीद को ये भी नहीं होती। अल्लाह अकबर। और दूसरी बात है कि बार बार अल्लाह के रास्ते में शहीद होकर दोबारा ज़िंदा किया जाऊँगा तो उसके दर्जे पाऊँगा। शहीद के बहुत सारे दर्जे हैं जो आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मौत को खैर व बरकत का बायस बनाने के लिए अल्लाह ताला से ये दुआ मांगनी चाहिए, और वो दुआ क्या है? अनबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, दोहरा लीजिए, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अम्री व अस्लिह ली दुनयाय अल्लती फीहा मआशी व असलिह ली आखिरती अल्लती फीहा मआदी वजअलिल हयात ज़ियादतन ली फी कुल्ली खैर वजअलिल मौत राहतन ली मिन कुल्ली शर। रवाहु मुस्लिम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह मेरे दीन की इस्लाह फरमा जो मेरे इंजाम का मुहाफिज़ है, मेरी दुनिया की इस्लाह फरमा जिसमें मेरी रोज़ी है, मेरी आखरत की इस्लाह फरमा जहाँ मुझे मरने के बाद पलट कर जाना है, मेरी ज़िंदगी को नेकियों में इजाफे का बायस बना, और मौत को हर बुराई से बचने के लिए बायस राहत बना। आमीन तो कहिए। आमीन। तो बड़ी प्यारी दुआ है और बड़े आराम से याद हो जाती है। आप ये बुक अपने पास रखा करें, हर नमाज के बाद एक आध दफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगी। तो इस टॉपिक में हमने क्या सीखा कि मौत की तमन्ना तो नहीं की जा सकती, लेकिन दो चीज़ें याद रखिएगा। एक तो शहादत की तमन्ना की जा सकती है। हज़रत उमर फ़ारूक भी यही दुआ किया करते थे कि अल्लाह मुझे अपने नबी के शहर में शहादत की मौत दें। लोग बड़े हैरान होते थे कि मदीना तो अमन वाला शहर है, उधर तो जंग कभी होगी नहीं, अब ख़त्म हो गए वो सिलसिले तो शहादत कैसे होगी। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ताला ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की दोनों दुआएँ पूरी कर दी। फिर दूसरी चीज़ हमने सीखी कि जब दीन पे ख़तरा हो, ईमान को ख़तरा हो, तो फिर दुआ ये भी नहीं की जा सकती कि मुझे मार दे। ये कहा जा सकता है कि ज़िंदा तब तक रखना जब तक कि ज़िंदगी मेरे हक में बेहतर है। और आज के इस नशिस का आखिरी टॉपिक हम पढ़ेंगे सकरातुल मौती, मौत की सख्तियाँ। ये लफ्ज़ सकरात क्या है? सकरतुन से है, बेहोशी। मौत की तकलीफ़ और सख्ती बरहक है। दलील सूरत क़ाफ़ आयत 19। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, और मौत की सख्ती हक ले कर आ पहुंची। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि मौत की तकलीफ नहीं होती, ये तो होगी। जैसे दुनिया में आते हुए तकलीफ है ना, अब भूल गई है, मौत की होगी, लेकिन बाद के इनामात को देखकर भूल जाएगी। और दूसरी बात देखिए कि मोमिन को मौत की तकलीफ भी होती है ना, तो साथ ही साथ फरिश्ते उसको अगली खुशखबरियां भी दे रहे होते हैं। तो इसलिए जो तकलीफ आनी है वो तो आनी है, बस नेकियां करें और बाकी चीज़ों को अल्लाह पे डाल दीजिए। मौत की तकलीफ बड़ी शदीद है। अन जाबिरिन रदी अल्लाह अन्हु काल काला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि सल्लमा ला तमन्नवुल मौता फ़इन्ना हौलल मतलई शदीदुन वइन्ना मिनस सआदति अन यतूल उमरुल अब्दी व यरज़क़ुहुल्लाहु अज़्ज़ व जल्लल इनाबता। रवाहु अहमद। मौत की तमन्ना न करो, जान कुनी की तकलीफ़ बड़ी शदीद है, और ये नेक बख्ती की अलामत है कि अल्लाह ताला किसी बंदे की उम्र लंबी करे और इसे तौबा की तौफीक अता फरमाए। इसे अहमद ने रिवायत किया, ए अल्लाह सब सुनने वालों की उम्रें लंबी फरमा और गुनाहों पे तौबा की भी तौफीक दे और नेकियों पे इस्तकामत से जमने की भी तौफीक अता फरमा। मौत की जितनी तकलीफ़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई, इतनी तकलीफ़ क़यामत तक किसी दूसरे आदमी को नहीं होगी। अन अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाहु अन्हु क़ाल लम्मा वजद रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन करबिल मौती मा वजद قالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد خدر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد الموافات يوم القيامة. رواه ابن ماجه. जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत की तकलीफ़ शुरू हुई तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा, हाय मेरे बाप की तकलीफ़। सोचिए ज़रा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के दर्द को महसूस कीजिए। हमारे लिए अल्लाह के नबी का वजूद क्या खूबसूरत वजूद है, तो कहाँ फिर वो बेटी। बाप बेटी का रिश्ता तो आप सभी जानते हैं कैसा होता है, तो बाप की तकलीफ़ देखकर तड़प उठी, हाय मेरे बाप की तकलीफ़। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के बाद तुम्हारे बाप को ऐसी तकलीफ़ कभी ना होगी। तुम्हारे बाप को मौत के वक्त ऐसी तकलीफ़ आई जो आइंदा क़यामत तक किसी और को नहीं आएगी। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की तकलीफ़ पर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का इजहार ख्याल। अन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कालत मात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नहु लबैना खाक़िनती व ज़ाक़िनती। ये भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, यानी बॉडी पार्ट्स के अरबी में नाम। खाक़िनती व ज़ाक़िनती, आपने इंशाल्लाह जब अभी तर्जमा पढ़ूंगी तो ढूंढना है कि इनका क्या मतलब है। फला अक्रहु शिद्दतल मौती लियाहदिन अबदन बादन नबीश। रवाहुल बुखारिश। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात इस हालत में हुई कि आपका सर मुबारक मेरे सीने और ठोड़ी के दरमियान में था। हाकनती व ज़ाकिनती, सीने और ठोड़ी के दरमियान में था। आपकी मौत की तकलीफ़ देखने के बाद अब मैं किसी के लिए मौत की सख्ती को बुरा नहीं कहती। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अल्लाह ताला ने, आप देखिए कि मौत के वक्त को भी कैसे रखा है, इसको थोड़ा सा समझ। आप पहली बात देखिए कि रूह जिस्म में गुंधी हुई है, वो कैसे है ये देखिएगा। जैसे आपके मेरे जिस्म पे बाल होते हैं ना, अगर आपने कभी वैक्स कराई हो और बाल खिंचते हैं जब, क्या होता है? आप शेव करें, ऊपर से सिर्फ उसको ट्रिम करें, कुछ भी नहीं होता। बाल काटते हैं कुछ नहीं होती ना दर्द, लेकिन जब आप वैक्स के साथ बाल निकालते हैं दर्द होती है ना। ये है हर बाल की रूह खींचना। आप इतना सा पैच लगाएं और उसके ऊपर से जब आप खींचे तो दर्द हो, पूरे जिस्म के सर से पांव तक हर सेल के अंदर रूह गुंधी हुई है। ये है वन नाजियाती गरका वन नाशिताती नश्ता। और जब निकलेगी तो फिर उतनी चीख से निकलेगी। कभी बालों में च्युइंगम लग जाए, आटा लग जाए, खींचते तो पूरा बाल जड़ तक खींचता है ना बस। और एक और बड़ी प्यारी सी बात, मोमिन की रूह पहले ही डिटैच होती है, उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। काफिर का दिल दुनिया में, दुनिया की चीज़ों में इतना खुबा होता है कि उसके लिए मौत का वक्त ऐसे ही है कि वही बात है कि चिपकी हुई चीज़ को हटाना। तो ये दुआ कीजिए कि दुनिया में ही हम तैयारियां करें। फिर एक और मिसाल ले लेते हैं। आप देखिए ऑपरेशन होता है ना, कभी कभी जिस्म का कोई उस भी काटना पड़ता है, बाद बाद दिल तक बदलते हैं, क्या करते हैं, बेहोश करते हैं ना। आप तो कोई बॉडी पार्ट भी खाली उतना सुन कर दिया जाता है, कभी पूरा बेहोश किया जाता है। अगर बेहोश किए बगैर वो काटे तो वो उस काटने और उस जिस्म से नहीं, उस दर्द से ही बंदा मर जाए। बिल्कुल ऐसे लाइए, जब एक इंसान अल्लाह की रज़ा के साथ दुनिया से जा रहा होता है ना, तो एक किस्म का उसको सुन कर दिया जाता है। आजकल बेहोश करने का एक और तरीका भी आपने सुना होगा कि माथे पे एक ना ऐसे हेलमेट टाइप की चीज़ डालते हैं, तो उसके अंदर क्या खूबसूरत से कुछ सीन होते हैं, बंदा उसमें खो जाता है, उसका माइंड उसमें चला जाता है, स्टार्स या कुछ ऐसे, जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ, तो वो भी एक किस्म का बेहोशी है। मोमिन को अल्लाह ताला क्या कुछ दिखाते हैं, कल का सबक बहुत ही खूबसूरत है। आप शुरू में ही जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं आपको अभी बता दूं, ताकि आपके लिए भी मेरे तरह इंतज़ार करना बहुत मुश्किल हो जाए। मरते वक्त मोमिन के एजाजात, हम इंशाल्लाह 10 मुख्तलिफ ऑनर्स देखेंगे जो मरते वक्त एक मोमिन को मिलते हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे और हम इस सारी चीज़ों को सीख सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।